بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پرستت ہے۔ شروتاؤں، آج کے کارکرم کے آرمبھ میں آپ سورہ فصلت کی 30ویں سے لے کر 33ویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عباس امام جمعہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نزلا من غفور رحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اور پھر اس پر دڑھتا پوروک جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی شوکا کل ہو اور اس سورگ سے پرسن ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سانسارک جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پرلے میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اچھا ہوگی، और यहाँ तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जिसकी तुम मांग करोगे। ये अत्यंत क्षमाशील और दयावान ईश्वर की ओर से तुम्हारे आतिथ्य का साधन है। और उस व्यक्ति से अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को ईश्वर की ओर बुलाए, अच्छे कर्म करे और ये कहे कि निश्चित रूप से मैं उसके आज्ञाकारी बंदों में से हूँ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूँ अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। हमारे फेसबुक पेज का पता है parstoday.hindi। व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओ, आज सोमवार है, बहमन की 23, शाबान की 2 और फरवरी की 12 तारीख। इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और श्रोताओ, हम इस उपलक्ष्य में बधाई भी प्रस्तुत करते हैं। सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विश्व दर्पण। तो यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे विश्व समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोता, अब मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने कहा है कि गजा में नई जीत दर्ज करने के लिए रेजिस्टेंस फोर्सेस मुबारकबाद की पात्र हैं। हिजबुल्ला के प्रमुख और जिहाद इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात में गजा युद्ध की ताजा स्थिति की समीक्षा की गई। भारत में किसानों ने अपनी मांगें लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। पाकिस्तान में सरकार गठन की प्रक्रिया के लिए राजनीतिक दलों के सघन प्रयास और जोर तोड़ जारी है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने गजा में नई जीत हासिल करने के लिए फिलिस्तीनी प्रतिरोधी नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्रीय प्रतिरोध अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने रविवार शाम दमिश्क में इस्लामी क्रांति की सफलता की 45वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हमें बहुत खुशी है कि तेहरान और दमिश्क के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और आज हम ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता की वर्षगांठ ऐसी स्थिति में मना रहे हैं कि जब ज़ायनी शासन गजा में लोगों का नरसंहार कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना था कि हम प्रतिरोधी नेताओं को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि उन्होंने गजा में एक नई जीत दर्ज की है।
गजा पट्टी के रफा शहर पर ज़ायनी सेना के हवाई हमलों और बमबारी में कम से कम 100 लोग शहीद और सैकड़ों अन्य घायल हो गए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ज़ायनी सेना बर्बरतापूर्ण आम नागरिकों के घरों और मस्जिदों को निशाना बना रही है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग शहीद और 230 से ज्यादा घायल हो गए। दर्जनों लोग इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसराइली हमलों में घायल होने वालों की बड़ी संख्या के मद्देनजर गजा के अस्पताल में उनका उपचार करना सक्षम नहीं है। یہ حملہ اس خبر کے ترنت بعد ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ غزہ کے خان یونس علاقے میں پرتیرودھی فلسطینی لڑاکوں کے حملے میں 11 اسرائیلی سینک مارے گئے ہیں. دوسری اور رفع میں اس وقت بڑی سنکھیا میں وہ فلسطینی شرن لیے ہوئے ہیں جنہیں اس سے پہلے اسرائیلی سینا نے خان یونس اور دوسرے علاقوں سے نکال دیا تھا. غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک 28,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں بڑی سنکھیا بچوں اور مہیلاؤں کی ہے.
سوموار کو تڑکے غزہ میں فلسطینی پرتیرودھی لڑاکوں نے گھات لگا کر 11 زائونی سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. غزہ پٹی کے خان یونس علاقے میں فلسطینی لڑاکوں دوارا گھات لگا کر کیے گئے حملے میں زائونی سینا کے کئی ادھیکاریوں سمیت کم سے کم 11 سینکوں کے مارے جانے کی خبر ہے. اسرائیل کے سرکشا سوتروں کا کہنا ہے کہ آج اسرائیلی سینا کے پروکتا ڈینیل ہگاری غزہ میں مارے جانے والے سینکوں کے بارے میں بیان جاری کرنے والے ہیں. اس سے پہلے رویوار کو حزب اللہ نے اسرائیلی سینی ٹھکانوں اور پرتشٹھانوں پر 4 حملے کیے تھے.
اسرائیلی سینا کے چیف آف سٹاف نے غزہ پٹی کے دکشن میں رفا کراسنگ پر زمینی حملہ کرنے کے لیے ساودھان سینکوں کو واپس بلانے کے زانی پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو کے انوروھ کا ورودھ کیا ہے. رویوار کو اسرائیلی ٹی وی چینل 13 کی رپورٹ کے مطابق زائنی پردھان منتری نے غزہ کے دکشن میں استھت رفا شہر پر حملے کے لیے سیوانوت سرکشا بلوں کو پھر سے سنگٹھت کرنے کا انوروھ کیا ہے, لیکن اسرائیلی سینا کے چیف آف اسٹاف ہرٹسی ہلیوی نے نیتن یاہو کے اس انوروھ کا ورودھ کیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق رفا میں زمینی حملے کو لے کر جہاں دنیا بھر میں اسرائیل کا ورودھ بڑھتا جا رہا ہے, وہیں زائونی شاسن کے راجنیتک اور سینیہ ڈھانچے کے بیچ مت بھید کھل کر سامنے آ گئے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی وار کیبنیٹ کی حالیہ بیٹھک میں ہلیوی نے نیتن یاہو کے بیان پر پرتکریا دیتے ہوئے کہا, سینا اپنا کام کر رہی ہے اور بہتر ہوگا کہ سرکار راجنیتک معاملوں پر زیادہ دھیان دے.
فلسطین کے جہاد اسلامی سنگٹھن کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے بیروت میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی, جس میں غزہ میں تازہ استھتی کی سمیکشا کی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ لڑائی میں وجے کے لیے لگاتار سنگھرش جاری رکھنا ضروری ہے. دونوں نیتاؤں نے ملاقات میں غزہ پٹی کے ساتھ ویسٹ بینک میں جاری لڑائی کے حالات کا بھی جائزہ لیا, ساتھ ہی دوسرے مورچوں پر جاری گتویدھیوں کے بارے میں بھی بات کی. ایکسس آف ریزسٹنس کہے جانے والے نیٹورک سے جڑی فورسز الگ الگ مورچوں سے زائونی اور امریکی ہتوں پر حملے کر رہی ہیں تاکہ فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملوں پر انکش لگایا جا سکے. لڑائی کے میدان میں اور راجنیتک منچ پر سمبھاوت پریورتنوں کے بارے میں بھی دونوں نیتاؤں نے بات کی. 7 اکتوبر کے طوفان الاقصی آپریشن کے اگلے ہی دن سے حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اور اب تک حزب اللہ نے اسرائیلی ٹھکانوں پر 1,000 سے ادھک حملے کیے ہیں.
یمن کی سینا نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ایک سمندری جہاز پر ہم نے میزائل حملہ کیا ہے. یمن کے آرمڈ فورس کے پروکتا یحییٰ السری نے کہا کہ ہماری نوسینا نے امریکی شپ سٹار ایریاز پر میزائل فائر کیا ہے. پروکتا نے کہا کہ اس حملے کے لیے کئی میزائل پریوگ کیے گئے اور سب اپنے نشانے پر لگے. پروکتا نے اپنے بیان میں بتایا کہ ہمارے آرمڈ فورسز اپنے اس فیصلے پر اڈیک ہیں کہ اگر غزہ میں زائنی شاسن کے حملے بند نہیں ہوتے تو لال ساگر سے گزرنے والے اسرائیلی جہازوں اور اسی طرح اسرائیل جانے والے کسی بھی دیش کے جہاز کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا. یمنی سینا نے کہا کہ یمن کے آرمڈ فورسز کو غزہ میں فلسطینی بھائیوں پر جاری زائنی شاسن کے اتیاچار کا جواب دینے اور یمن پر امریکہ اور برٹن کے حملوں کا جواب دینے میں کسی طرح کا کوئی سنکوچ نہیں ہے. برٹن کی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی امبیری نے بھی سوموار کی صبح کہا کہ مارشل دویپ سموہ کے جھنڈے کے ساتھ صف کرنے والے یونانی جہاز پر یمن کے قریب میزائل حملہ ہوا ہے. اس دعوے کے انوسار یہ گھٹنا لال ساگر کے دکشنی بھاگ میں ہوئی جہاز بابول مندم اسٹیٹ سے گزر رہا تھا.
بھارت میں کسانوں نے ایک بار پھر اپنی مانگوں کے سمرتھن میں میدان میں اترنے کی تیاری کر لی ہے. کسانوں کے دو بڑے سنگھٹنوں سنیوکت کسان مورچہ اور کسان مزدور مورچہ نے اپنی مانگوں کو لے کر 13 فروری کو دلی کوچ کا نعرہ دیا ہے. اس سے پہلے اپنے 1 سال کے لمبے آندولن سے کسانوں نے نریندر مودی سرکار کو 3 کرشی قانونوں کو نرست کرنے پر مجبور کر دیا تھا. کسانوں کو ڈر تھا کہ سرکار ان قانونوں کے ذریعے کچھ چنندہ فصلوں پر ملنے والے نیونتم سمرتھن مولیہ دینے کا نیم ختم کر سکتی ہے اور کھیتی کسانی کے
कॉरपोरेटीकरण को बढ़ावा दे सकती है। इसके बाद उन्हें बड़ी एग्री कमोडिटी कंपनियों का मोहताज होना पड़ेगा। कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया था। उस दौरान सरकार ने उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा किया था। इसके साथ ही उनकी कुछ और मांगों को भी पूरा करने का वादा किया गया था। किसान अब इन मांगों को मानने के लिए दबाव बनाने की तैयारी में है। 13 फरवरी का दिल्ली चलो का नारा उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है।
नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत पर पहले ध्वनिमत से फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर वोटिंग कराई गई और विश्वास मत के पक्ष में 129 वोट पड़े। वोटिंग में विपक्ष के विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। नीतीश कुमार ने सोमवार 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत पेश किया। विश्वास मत के पहले दोनों ओर से बयानों का दौर जारी था। विपक्ष खेला होने का दावा कर रहा था तो बीजेपी और जेडीयू के नेता विश्वास मत हासिल करने का दावा कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास मत पेश करने से पहले बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव ने स्पीकर अवध बिहारी और चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के समर्थन में बहुमत होने के कारण चौधरी ने कुर्सी छोड़ दी और डिप्टी स्पीकर माहेश्वर हजारी ने कुर्सी संभाली।
पाकिस्तान में हुए चुनावों में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों की बहुमत में हुई जीत के बाद रविवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर गठबंधन सरकार के गठन का ऐलान किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बीच रविवार को हुई बैठक के बाद तय हुआ कि दोनों ही पार्टियां देश में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गठबंधन जारी रखेंगी। इसके अलावा दूसरे दल भी सरकार गठन के लिए राजनीतिक जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, जिनमें पीटीआई भी शामिल है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। इसराइल ने क्यों रफा पर हमला किया, नेटो को लेकर ट्रंप का विवादित बयान और भारत में फिर से जोर पकड़ता किसान आंदोलन। दोस्तों, इन विषयों पर हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। रफा पर ज़ायोनियों के ताज़ा हमले में दसियों निर्दोष फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। विस्तार से बता रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
ज़ायोनी शासन ने रफा पर ज़मीनी हमला आरंभ कर दिया है। रफा पर उसके पार्श्विक हमलों के पहले दिन ही 100 से अधिक निर्दोष फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं। सवाल ये उठता है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू गजा युद्ध से घोषित लक्ष्यों में से किसी भी एक लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं, उसके बावजूद उन्होंने रफा पर हमला करने का क्यों फैसला किया। इसके जवाब में जानकार हलकों का कहना है कि ये सही है कि नेतन्याहू घोषित लक्ष्यों में से अभी तक एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सके हैं, मगर ऐसा नहीं है कि घोषित बातें ही इसराइल का लक्ष्य हैं। अवैध ज़ायोनी सरकार फिलिस्तीन में जारी युद्ध से बहुत से उन लक्ष्यों को भी हासिल करना चाहती है जिनकी घोषणा नहीं की गई है। मिसाल के तौर पर गैर कानूनी इसराइली सरकार फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से ताकत के बल पर निकाल देना चाहती है। है। रफा पर ज़ायनी सरकार ने जो हमला किया है उसका एक लक्ष्य यही है, क्योंकि रफा की सीमा मिस्र की सीमा से मिलती है और जब रफा पर हमला होगा तो फिलिस्तीनी मिस्र भागने पर बाध्य होंगे। दूसरे शब्दों में रफा में रहने वाले फिलिस्तीनी वही करेंगे जो इसराइल की हार्दिक इच्छा है, क्योंकि इसराइल के पार्श्विक हमलों का एक लक्ष्य फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकालना है और रफा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से भगाने के लिए बाध्य करना दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक आसान होगा। इसलिए इसराइल ने रफा पर हमला किया है। अगर ये मकसद न होता तो इसराइल रफा पर हमला न करता, क्योंकि फिलिस्तीनी तो दूसरे क्षेत्रों में भी रहते हैं। इसलिए उसने रफा में निर्दोष फिलिस्तीनियों का नरसंहार आरंभ कर दिया है। नेतन्याहू का मानना है कि युद्ध विराम का अर्थ पराजय स्वीकार करना है और पराजय स्वीकार करने का अर्थ नेतन्याहू के राजनीतिक जीवन की समाप्ति है और इस बात की संभावना है कि युद्ध विराम के बाद नेतन्याहू जेल भी जा सकते हैं। ज़ायनी सरकार बार बार कहती है कि उसके हमलों का एक लक्ष्य हमास के नियंत्रण में इसराइली बंदियों को मुक्त कराना है, मगर ज़ायनी सरकार का ये दावा मात्र दावा है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे अपने बंदियों की जानों की फिक्र होती तो वो कभी भी गजा पर इतने भीषण हमले न करता, क्योंकि उसके पार्श्विक हमलों में ही दर्जनों ज़ायनी व इसराइली बंदी मारे गए हैं। इसराइल ने इन बंदियों के मारे जाने पर एक बार भी खेद तक व्यक्त नहीं किया। हमलों को बंद करना तो बहुत दूर की बात है। इसराइल के इसी व्यवहार से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे अपने बंदियों की कितनी चिंता है। फिलिस्तीनियों की मातृभूमि पर अपने अवैध अस्तित्व की घोषणा करने वाले इसराइल की वकालत करने वाले देश ये कहते हैं कि इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, तो इसराइल के वकीलों से पूछा जाना चाहिए कि रफा से कौन से रॉकेट फायर किए जा रहे थे, क्या रफा में रहने वाले इसराइल पर हमला कर रहे थे, जिनसे बचने के लिए इसराइल रफा में रहने वाले निर्दोष मजलूम और शरणार्थी फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है, ये कौन सा आत्मरक्षा है। अब अमेरिका और मानवाधिकारों की रक्षा का राग अलापने वाले कहाँ हैं? वे क्यों इसराइल के पार्श्विक हमलों पर अर्थपूर्ण चुप्पी साधे हुए हैं? जानकार हलकों का मानना है कि इसराइल को कभी भी अपने बंदियों की न तो चिंता थी और न है, और अगर होती तो बहुत पहले अपने पार्श्विक हमलों को बंद कर देता और बंदियों के आदान प्रदान के संबंध में जो प्रयास किए जा रहे थे रफा पर इसराइल के पार्श्विक हमलों से वे भी समाप्त हो जाएंगे।
ट्रम्प कहते हैं कि हम तो नेटो की मदद करते हैं, किंतु जब हमको उनकी जरूरत होगी तो क्या वे हमारी मदद के लिए आगे आएंगे? एक समीक्षा लेकर उपस्थित हैं सैयद मीसम।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस देश के आगामी राष्ट्रपति चुनावों के लिए प्रमुख रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि रूस उन नाटो सदस्यों के साथ जो चाहे कर सकता है जो समझौते के तहत लागत के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए पर्याप्त योगदान नहीं देते हैं। शनिवार 10 फरवरी को दक्षिण कैरोलिना में एक चुनावी रैली में भाषण के दौरान ट्रम्प ने कहा कि नाटो नेताओं के साथ एक बैठक में एक बड़े देश के राष्ट्रपति ने उनसे पूछा, सर अगर हम भुगतान नहीं करते हैं और रूस हम पर हमला कर देता है तो क्या आप उस स्थिति में हमारा समर्थन करेंगे? मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने भुगतान नहीं किया, इसका मतलब यह है कि आप दोषी हैं, इसलिए मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा। वे यानी रूसी जो चाहें आपके साथ कर सकते हैं, आपको भुगतान करना होगा, आपको अपने बिलों का भुगतान करना होगा। पिछले महीने ट्रम्प ने लास वेगास में अपने समर्थकों से कहा था, अमेरिका नाटो के लिए भुगतान करता है और हमें इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अगर हमें कभी उनकी मदद की जरूरत पड़े और मान लीजिए कि हम पर हमला हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वे हमारी मदद के लिए आएंगे। नाटो सदस्यों पर रूस के संभावित हमले और इसे लेकर अमरीका की उदासीनता को लेकर ट्रम्प के नए रुख ने एक बार फिर नाटो और उसके सदस्यों के साथ अमरीका के संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल के दौरान उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्यों को रक्षा के लिए अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 2% आवंटित नहीं करने और नाटो खर्चों में पर्याप्त योगदान नहीं देने के लिए दोषी ठहराया था। اس کے علاوہ انہوں نے ناٹو کو ایک پرانا سنگٹھن بھی مانا جو اب اپیوگی نہیں رہ گیا ہے۔ ٹرمپ نے اس سینیہ سنگٹھن کے خرچوں میں یورپی سدسیوں کی بھاگیداری کم ہونے پر بھی سوال کھڑے کیے۔ ٹرمپ نے آلوچنا کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ناٹو کو اپنے حصے سے ادھک بھگتان کرتا ہے جو انوچت ہے۔ مارچ 2018 کے انت میں امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے الگ الگ پتروں میں کم سے کم 10 ناٹو سدسیہ دیشوں کے پرمکھوں کو سینیہ خرچ پر اپنے سکل گھریلو اتپاد کا کم سے کم 2% خرچ کرنے کی ان کی پرتیبدھتاؤں کی اپیکشا کرنے کے بارے میں چیتاونی دی تھی۔ ان پتروں میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب ان دیشوں دوارا سینیہ خرچوں اور ناٹو خرچوں کے لیے پریاپت دھن کے آوندن کی کمی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب ٹرمپ نے کہ جو نومبر 2024 کے راشٹرپتی چناؤ کے لیے ریپبلکن کے سب سے پرمکھ امیدوار ہیں اور وبھن سرویکشنوں میں ان کے چناؤ جیتنے کی ادھک سمبھاونا ہے، اپنے چناوی بھاشن میں ایک بار پھر یہ مدعا اٹھایا ہے۔ ناٹو کے ساتھ واشنگٹن کے سمبندوں کے بارے میں پورو امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے آلوچناتمک بیانوں کے بعد یورپی پریشد کے ادھیکش چارلز مشیل نے ترنت یورپی سنگھ کی رڑنیتک سوائتتا حاصل کرنے اور رکشا کھیتر میں نویش کرنے کی آوشیکتا پر زور دیا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
اور شوتاؤ، اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ کسانوں کا آندولن بھارت میں پھر سے زور پکڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ نئی دلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
13 فروری کو کسانوں کے پردرشن کو دیکھتے ہوئے دلی میں 12 مارچ تک سبھی بڑی سبھاؤں اور پردرشنوں پر پرتیبندھ لگا دیا گیا ہے۔ دلی پولیس نے پوری راجدھانی میں دھارا 144 لگا دی ہے۔ دلی پولیس دوارا جاری آدیش کے انوسار راشٹریہ راجدھانی میں ٹریکٹروں کے پرویش پر پرتیبندھ لگا دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ اتر پردیش، ہریانہ اور پنجاب کے زیادہ تر کسان سنگھوں نے فصلوں کے لیے نیونتم سمرتھن مولیہ ایم ایس پی کی گارنٹی کو لے کر قانون بنانے سہیت اپنی مانگوں کو سویکار کرانے ہیتو کیندر پر دباؤ بنانے کے ادیش سے 13 فروری کو ویرودھ پردرشن کا آہوان کیا ہے، جس کے تحت کسانوں کو دلی چلو کی کال دی گئی ہے۔ دلی پولیس کے انوسار پیٹرول، سوڈا بوٹل اور پتھر اتیادی اکٹھا کرنے پر پوری طرح روک ہے۔ 12 فروری سے 12 مارچ تک لاؤڈ اسپیکر کے پریوگ پر بھی روک لگا دی گئی ہے۔ دھارا 144 کا الگھن کرنے والوں کی ترنت گرفتاری کا آدیش بھی دیا گیا ہے۔ ویرودھ پردرشن کے مدنظر پولیس نے 5000 سے ادھک سرکشا کرمیوں کو تعینات کیا ہے۔ راشٹریہ راجدھانی میں 13 فروری کو کسانوں کے پرستاوت دلی چلو مارچ کے مدنظر سنگھو، غازی پور اور ٹکری سیماؤں پر سرکشا کڑی کر دی گئی ہے تتھا یاتایات پابندیاں لاگو کی گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دلی چلو آندولن کے لیے پنجاب اور ہریانہ سے کسان روانہ ہونے لگے ہیں، جنہیں روکنے کے لیے کانکریٹ کے اوروھ، سڑک پر بچھانے والے نکیلے اوروھک اور کنٹیلے تار لگائے جا رہے ہیں۔ کسانوں کے آندولن کو دیکھتے ہوئے پنجاب، ہریانہ اور دلی میں الرٹ گھوشت کر دیا گیا ہے۔ پڑوسی راجیوں سے لگی سیماؤں کو قلعے میں پریورتت کر دیا گیا ہے۔ ہریانہ سرکار کی اور سے چودھری دلویر سنگھ انڈور اسٹیڈیم اور گرو گوبند سنگھ اسٹیڈیم کو استھائی جیل بنایا گیا ہے۔ کسی بھی اپریے استھتی میں کسانوں کو بڑی سنکھیا میں حراست میں لینے یا گرفتار کرنے پر انہیں ان استھائی جیلوں میں رکھا جائے گا۔ ज्ञात रहे कि किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ वर्ष 2020 में लंबा आंदोलन किया था, जिसके कारण आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा था और तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ा था। यद्यपि किसानों के इस आंदोलन में कई किसान संगठन शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी दावा किया जा रहा है कि लगभग 200 से अधिक किसान यूनियनों के समर्थन से दिल्ली चलो मार्च की घोषणा की गई है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोता, आपने सुना कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, और अब पैगंबर इस्लाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शुभ जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, इमाम हुसैन के शुभ जन्मदिवस पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
तीन शाबान सन 4 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना शहर में पैदा हुए। पैगंबर इस्लाम ने हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अली अलैहिस्सलाम की दूसरी संतान का नाम हुसैन रखा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक खास लगाव रखते थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके इस लगाव को इस हदीस से समझा जा सकता है कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ।
आज इमाम हुसैन के नाम की गूंज पूरी दुनिया में है और जो भी उनको सुनता है करबला में उनके अमर आंदोलन को याद करता है और उससे इंसानियत और आज़ादी का पाठ सीखता है। इमाम हुसैन को हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत पैगंबर इस्लाम जैसे महान ईश्वरीय दूतों का उत्तराधिकारी बताया गया है। उन्हें ये विशिष्टता हज़रत फातिमा, हज़रत अली और पैगंबर इस्लाम जैसी हस्तियों की छत्र छाया में हासिल हुई। इमाम हुसैन का 57 वर्ष का जीवन उनकी महान आत्मा और चरित्र को दर्शाता है।
इतिहास में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चरित्र का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि वो दयालु, उदार और मेहमान नवाज थे। अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल रखते थे, मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे, कर्जदारों का कर्ज चुका दिया करते थे, अनाथों के लिए उनके मन में दया और हमदर्दी थी, निर्धनों और पीड़ितों की मदद करते थे, बहुत अधिक दान देते थे, गरीबों और निर्धनों के साथ बैठकर खाना खाते थे, ईश्वर की बहुत ज्यादा इबादत करते थे, उनकी वीरता के हर कोई गुणगाता था, युद्ध के मैदान में दृढ़ और निडर थे, दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादा रखते थे, उनके विचार ज्ञान का स्रोत थे और उनमें सत्य को व्यक्त करने की अद्वितीय शक्ति थी।
भलाई की सिफारिश करना और बुराई से रोकना इमाम हुसैन के जीवन का एक सबसे स्पष्ट आयाम है, जिसका सबसे स्पष्ट उदाहरण बनी उमैया के अत्याचारपूर्ण शासन के खिलाफ प्रतिरोध करना और समस्त बुराइयों से लिप्त यजीद जैसे शासन की बैयत करने से इनकार करना था। ईश्वर ने अपने दूतों को भलाई की सिफारिश करने और बुराइयों से रोकने का आदेश दिया है। भलाई की सिफारिश और बुराई से रोकने का एक उदाहरण न्याय की स्थापना और अत्याचार का विरोध है। न्याय ईश्वरीय आदेश है जो जीवन के सभी आयामों पर आधारित है, लेकिन उसका सबसे स्पष्ट उदाहरण सामाजिक न्याय और लोगों के अधिकारों का पालन है, और इसी कारण अगर कोई शासक अत्याचारी है तो उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निकट सम्मानजनक और गौरवपूर्ण जीवन अर्थपूर्ण एवं सुंदर है। जीवन ईश्वर की ओर से वरदान है और जीवन का अधिकार समस्त इंसानों के लिए सुरक्षित किया गया है। किसी भी तरह से लोगों के जीवन को खतरे में डालना निंदनीय है और अगर किसी पर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए। कुरान कहता है, जो कोई ऐसा नहीं करता वो अपने ऊपर जुल्म करता है। कुरान के सूरह निसा की 97वीं आयत में आया है कि फरिश्ते पीड़ितों से पूछेंगे, लौकिक जीवन में तुम्हारी स्थिति क्या थी? वे जवाब देंगे, हम जमीन पर कमजोर थे। वे पूछेंगे, क्या ईश्वर की धरती विशाल नहीं थी ताकि कहीं दूसरी जगह पलायन कर जाते? इसलिए वे उन लोगों में से हैं जिनका ठिकाना नरक है और उनका भविष्य बुरा है।
इमाम हुसैन के प्रतिरोध ने मानवीय समाज में राजनीतिक एवं सामाजिक जागरूकता और क्रांति उत्पन्न कर दी, जिसके बाद इस्लामी जगत में जुल्म और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का एक सिलसिला शुरू हो गया। करबला में इमाम हुसैन की क्रांति ने अंतहीन आंदोलनों को जन्म दिया। विशेष रूप से इस्लामी जगत में जालिम एवं अत्याचारी शासकों के खिलाफ आंदोलनों का सिलसिला करबला की लड़ाई के स्पष्ट एवं चमत्कारी परिणामों में से एक है।
दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रतिरोध को एक दीर्घकालिक और एक ऐसे प्रतिरोध के रूप में देखना चाहिए जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है और रहती दुनिया तक हर इंसाफ पसंद इंसान इससे प्रभावित होकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। दुनिया के कई देशों में लोगों ने करबला की घटना से प्रेरित होकर अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंका और न्याय के शासन की स्थापना की। इसी कारण महान बुद्धिजीवी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने नतमस्तक होते हैं। ईसाई बुद्धिजीवी एंटन बर्रा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रतिरोध की महानता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अगर हुसैन हम में से होते तो हर जगह उनका झंडा फहराते और गांव-गांव में उनका मिंबर बनाते और लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर ईसाई धर्म की ओर आमंत्रित करते।
हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसा दर्पण है जिनमें समस्त ईश्वरीय दूतों की झलक देखी जा सकती है। ईश्वर ने उन्हें पूरी दुनिया के लोगों के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी प्रदान की थी, इसी वजह से ईश्वरीय दूतों का महान चरित्र और स्वभाव उनमें झलकता है। उन्हें दुनिया में न्याय और इंसाफ की स्थापना करने और जुल्म और भेदभाव को मिटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ईश्वरीय दूतों के गुणों के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए ज्ञान, विज्ञान, प्रेम, साहस, उदारता, धैर्य और विनम्रता जैसे गुणों में सभी दूतों के समान हैं।
फ्रांसीसी इस्लामविद हेनरी कॉर्बिन कहते हैं कि मेरा मानना है कि इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने ईश्वर और लोगों के बीच ईश्वरीय मार्गदर्शन के संबंध को हमेशा जीवित रखा है और नेतृत्व के विषय को लगातार स्थापित किए रखा। यहूदी धर्म ने ईश्वर और लोगों के बीच के वास्तविक संबंध को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म कर दिया और उसके बाद हजरत ईसा और हजरत पैगंबर मोहम्मद पर विश्वास नहीं किया। परिणाम स्वरूप ईश्वर और सृष्टि के बीच का संबंध टूट गया। ईसाई धर्म भी हजरत ईसा तक आकर रुक गया। इस्लाम में और विशेष रूप से शिया मत में हालांकि पैगंबर इस्लाम की नबूवत के साथ ईश्वर और इंसानों के बीच वही का या आकाशवाणी का सिलसिला टूट गया, लेकिन विलायत या अंतिम ईश्वरीय दूत के उत्तराधिकारी का सिलसिला जारी रहा। यह मार्गदर्शन की निरंतरता है जो ईश्वरीय दूत के बाद भी हमेशा के लिए जारी रहेगी।
इस तरह से इस्लाम में अध्यात्म स्थायी और अमर है। यही वजह है कि इस्लामी समुदाय अवांछित परिवर्तनों का दृढ़ता से मुकाबला करते हैं जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। तत्कालीन घटनाओं पर एक नज़र डालने से स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन इस्लामी शासन के भटक जाने और समाज के अपनी जड़ों से कट जाने के कारण इमाम हुसैन के सामने आंदोलन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ये एक सच्चाई है जिसने पैगंबर इस्लाम के बाद
5 दशकों में धीरे धीरे ये रूप धारण किया। लोगों ने पैगंबर इस्लाम की सिफारिशों को भुला दिया था और उनके परिजनों यानी अहले बैत को अलग थलग कर दिया था। इस्लामी समाज का आध्यात्मिक पतन जारी था। धार्मिक मान्यताओं के नाम पर अंधविश्वासों को बढ़ावा दिया जा रहा था और सत्ता में बैठे लोग जनता के खून पसीने की कमाई को अय्याशी में लुटा रहे थे। संक्षेप में परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि अगर इमाम हुसैन आंदोलन नहीं करते तो समाज इस्लाम से पहले वाली जाहिलियत की ओर पलट जाता।
امام حسین علیہ السلام نے اس واستوکتا کو سمجھا اور اسے لوگوں کے لیے اجاگر کیا۔ اسے انہوں نے بھلائی کی سفارش کرنے اور برائی سے روکنے کے روپ میں پریبھاشت کیا۔ یہ مول دھرم کے سدھانتوں اور شکشاؤں کی ویاکھیا اور اسلام کے نام پر سماج پر شاسن کرنے والے یزید کی شیطانی پروتی کا پردہ فاش تھا۔ امام نے الگ الگ سمے اور جنگوں پر لوگوں کو اس سے اوگت کرایا اور انہیں جاگرک کرنے کا پریاس کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی ایسے شاسن کا سامنا کرنا پڑے جو ایشوریہ حرام کو حلال جانے اور ایشوریہ آدیشوں کو پورن روپ سے اندیکھا کر دے، پیغمبر اسلام کے سدھانتوں کو اسپشٹ روپ سے پیرو تلے روننا شروع کر دے اور لوگوں کے ادھیکاروں کا کھل کر ہنن کرے اور ان کے آتم سمان اور مریادا کا کوئی خیال نہ رکھے، پھر بھی وہ اپنے ویوہار یا زبان سے اس کا ویرودھ نہ کریں، ایشور اس ویکتی کو اسی اتیاچاری شاسک کے ساتھ نرک میں ڈال دے گا۔
امام حسین علیہ السلام کے مارگ کو سپشٹ کرتے ہوئے ایران کی اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے کہتے ہیں، اسلام کی مہان وراثت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام ہر مارگ اور شیلی کو اپنا سکتے ہیں۔ وہ وراثت کی جو ان کے نانا پتا اور ان کے انویوں کی ہے، شہیدوں کے سردار کے جیون میں یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ اسلام کے ادیشوں کو اجاگر کرتے ہیں، لوگوں سے صحیح مارگ پر آگے بڑھنے کی سفارش کرتے ہیں، اسلام کی شکشاؤں کا پرچار پرسار کرتے ہیں اور لوگوں کے وویک کو جگاتے ہیں، انہیں جاگرت کرتے ہیں۔ امام حسین نے جیون بھر یہ کاریہ کیے ہیں۔ اس کے بعد اپنی جان کی بازی لگا کر ایک بڑے شیطان کا مقابلہ کیا۔ یہ ہے پورن بلیدان۔ اس طرح سے امام حسین نے اسلام کو بچایا، ان کے اسی قدم نے اسلام کو سرکشت بنا دیا۔
امام حسین علیہ السلام وہ چمکتا ہوا سورج ہیں جس نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا اور اتیاچار ایوم بھید بھاؤ کا شکار لوگوں کو آزادی اور سوادھینتا کا مارگ دکھایا اور ان کے سامنے انسان کے اتکرشٹ گڑوں کا آدرش پیش کیا۔ انہوں نے انسانوں کو سندیش دیا کہ کبھی بھی ظالموں ایوم اتیاچاریوں کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ ہاں دوستوں، امام حسین علیہ السلام نے ظلم اور اتیاچار سے مقابلہ کر کے ثابت کر دیا کہ ایشور کی پرسنتا کے لیے کام انجام دے کر اسے امرتا پردان کی جا سکتی ہے۔
انوکھے رتن کو پہچاننا سامانیہ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم سامانیہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام جیسے ان کے پوتر پریجنوں کے مہتو اور مہانتا کو کدھی نہیں سمجھ سکتے۔ امام حسین کی مہانتا کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ پیغمبر اسلام کے نواسے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے۔ اس اندر میں آیت اللہ خامنے کہتے ہیں، امام حسین نے ایسے گھر، ایسی گود اور ایسے آدھیاتمک واتاورن میں پرورش پائی تھی۔
تو دوستوں، کارکرم کا سمے یہی پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، اس وشیش کارکرم کے بعد اب پرستت ہے ہماری سبھا کا انتم کارکرم وشو درپن۔
विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे तीन अमरीकी सैनिकों के मारे जाने के बाद इराक और सीरिया में अमरीका के हमले की। जॉर्डन और सीरिया की सीमा के करीब स्थित टावर 22 छावनी पर ड्रोन हमले में तीन अमरीकी सैनिक मारे गए और 34 से ज्यादा घायल हो गए। इस पर अमरीका में बड़ा हंगामा रहा और अमरीका ने हमले के लिए ईरान के घटक संगठनों को जिम्मेदार करार दिया और जवाबी हमला करने की बात कही। इसके बाद अमरीकी बम्बार विमानों ने इराक और सीरिया में 7 सैनिक प्रतिष्ठानों में 80 से अधिक टारगेट पर 126 मिसाइल और बम फायर किए। अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारी जॉन किर्बी ने इस हमले के बारे में बताया।
US military forces struck more than 85 targets at 7 facilities utilized by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and the militant groups that they sponsor. 3 of the facilities are in Iraq, 4 of them are in Syria.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बार बार कह रहे थे कि वे जॉर्डन में हुए हमले का बदला लेंगे।
We had a tough day last night in the Middle East. We lost 3 brave souls.
बाइडेन बार बार ये भी कह रहे थे कि ईरान से टकराव नहीं चाहते और पश्चिमी एशिया में किसी बड़ी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। दरअसल अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि 7 अक्टूबर के हमास के तूफान अलक्सा ऑपरेशन के बाद इसराइल की बुनियादें पूरी तरह हिल गई हैं। अमेरिका को ये पता है कि जो हालात पैदा हो गए हैं उनमें ज़ायनी शासन के लिए अपना अस्तित्व बचा पाना बहुत कठिन होगा। अमेरिका ज़ायनी शासन की मदद करने और भयानक अपराधों में उसका हाथ बटाने के साथ ही कूटनीतिक जोर आजमाई भी कर रहा है कि किसी तरह इसराइल को बिखरने से बचा सके। वैसे खुद ज़ायनी अधिकारियों में इतना अहंकार भरा है कि उन्हें ये एहसास नहीं हो पा रहा है कि इसराइल डूब रहा है। यही वजह है कि ज़ायनी अधिकारी खुद अमरीकी अधिकारियों पर हमले करने लगे हैं। अमरीका ने फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना की बात कर दी तो ज़ायनी अधिकारियों पर मानो जुनून सवार हो गया और उन्होंने अमरीकी अधिकारियों की आलोचना शुरू कर दी। ज़ायनी संसद में सुरक्षा समिति के प्रमुख ज़ेविका कुगेल ने इसराइल के चैनल 12 से बात करते हुए कहा कि हम ब्रितानी कस्टोडियनशिप में नहीं हैं और ना हम अमरीकी ध्वज का 51वां स्टार हैं। हम इसराइल में हैं जो ज़ायनी राष्ट्र के लिए है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी स्टेट के बारे में जो बाइडेन और ब्रितानी विदेश मंत्री डेविड कैमरन जो कुछ कह रहे हैं वो ज़ायनी शासन के लिए ख़तरा है। ज़ायनी अधिकारी क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसका संबंध खुद उनके अपने स्वार्थों से है, लेकिन जो बाइडेन अपने विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, युद्ध मंत्री लॉयड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सिल्वान को बार बार विदेशी दौरे करवा रहे हैं और विशेष रूप से पश्चिमी एशिया के देशों के दौरे पर भेज रहे हैं, तो उनकी सारी कोशिश इसराइल को डूबने से बचाने की है। इसके लिए वे अमरीकी हितों को भी खतरे में डाल रहे हैं। तेहरान स्थित राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मोहम्मद मरंदी का कहना है कि इस तरह के हमले करके अमरीका खुद को दलदल में फंसाता जा रहा है।
The United States is only digging itself into a deeper hole. The United States is illegally occupying 1/3 of Syria. The United States keeps its military bases in Iraq despite the fact that the Iraqi parliament has told them to leave. They struck bases that are linked to the Iraqi military. They belong to the Iraqi military. The Iraqis condemned the attack, and the same is true with Syria. Biden wants to look strong. He hasn't attacked Iranians. And most importantly is the fact that this is about Iraqi and Syrian sovereignty.
ڈاکٹر مرندی کا کہنا تھا کہ امریکیوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ سب کو ایران کی پراکسی فورس بتانے لگتے ہیں. عراقی فورسز کو، سیریائی فورسز کو اور یمنی فورسز کو وہ ایران کی پراکسی فورس کا نام دیتے ہیں. وہ فلسطینیوں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، مگر وہ جنمت کو بیوقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے.
The Americans like to call everyone Iranian proxies, the Yemenis, the Lebanese, the Palestinians and the Iraqis and the Syrians, but that's just, they're just misleading public opinion and they're fooling themselves. People don't like their countries to be occupied. Iran doesn't have any forces in Iraq, and Iran's role in Syria is with the consent of the internationally recognized government in Damascus. Whatever Iran does in Syria, it is with the consent and support of the government. Iran helps defeat ISIS and Al-Qaeda. Remember, on February the 12th, 2012, Jake Sullivan, the now UN, U.S. National Security Advisor, sent an email to Hillary Clinton, saying, who was the Secretary of State, saying that in Syria, Al-Qaeda is on our side. ISIS came from Al-Qaeda. The U.S. Defense Intelligence Agency document of 2012 said that the U.S. allies in the region wanted to establish a Salafist entity between Iraq and Syria.
حالیہ مہینوں میں امریکی ٹھکانوں پر حملے تیز ہونے کی ایک وجہ غزہ میں زائنی شاسن کے بھیانک اپرادھ اور امریکہ کی اور سے ان اپرادھوں کا سمرتھن ہے. یعنی اگر امریکہ غزہ پٹی میں اسرائیل کے جگھنے اپرادھوں پر انکش لگائے اور اسرائیل کی مدد کرنا بند کرے تو امریکی پرتشٹھانوں پر حملے کم ہو جانے کی سمبھاونا ہے. جب غزہ پٹی میں سنگھرش ورام تھا تو امریکی چھاونیوں پر حملے رک گئے تھے، مگر امریکہ یہ کرنے کے بجائے عراق اور سیریا میں حملے کر رہا ہے جس پر جوابی حملے ہونا طے ہے. یعنی عراق اور سیریا کی فورسز نشچت طور پر امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گی، جیسا کہ انہوں نے بنایا بھی ہے.
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोल कर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण. हर हफ्ते सोमवार को
امریکہ نے یمن سے بھی جنگ مول لے لی ہے. زائنی شاسن کو بچانے کی کوشش میں یمنی فورسز نے صاف کہا تھا کہ وہ اسرائیلی اور اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بنائیں گی، مگر اس لڑائی میں بھی امریکہ اور برٹین کود پڑے. امریکہ کے پورو رکشا اپ منتری لارنس کارب کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے امریکی ادھیکاری عراقی ادھیکاریوں سے اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ انہیں عراق سے اپنے سینکوں کو نکالنا ہے، لیکن 7 اکتوبر کے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد امریکی ٹھنگانوں پر حملے تیز ہو گئے.
And that we left Iraq in 2011. In fact, I talked to Maliki about staying. Basically, we came back in 2014 at their invitation because of what ISIS was doing. And basically, that has been our role. Before October 7th, we were carrying this out. We were talking to the Iraqis about leaving. Sometimes they say something publicly, but privately, no, they still wanted us to stay. But after October 7th, you had over 160 attacks on the American forces there in Iraq and Syria. Fortunately, no one was killed, so our response was not overwhelming or as strong as it has been when the Americans died. And that's where we are right now.
کار بھی وہی گھسے پٹے امریکی آروپ دہراتے ہیں کہ علاقے کے دیشوں میں ایران کی پراکسی فورسز ہیں.
A lot depends upon how long we need to go after the groups that were responsible not only for killing the Americans but these 160 attacks and whether Iran will try and rein these groups in. You know, Iran has three proxies in the region.
مگر ایران ترک دیتا ہے کہ علاقے میں ایران کی گھٹک فورسز ہیں جن کا ایران سمرتھن کرتا ہے, لیکن انہیں پراکسی کہنا ان سنگٹھنوں کا اپمان ہے. یہ سنگٹھن اپنے راشٹریہ ہیتوں اور راشٹریہ قانون کے انوسار کام کرتے ہیں. پروفیسر منندی کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ امریکی فورسز علاقے میں ایک تو زیونی شاسن کی مدد کر رہی ہیں جو غیر قانونی شاسن ہے, اور اس کے علاوہ ان تتوؤں کو ٹریننگ دے رہی ہیں جو داعش کی مدد کرتے ہیں.
The real issue here is the genocide in Gaza. Have no doubt about it. And the United States, as we speak, is preparing the Israeli regime for an expansion in Lebanon. So in the coming weeks, we may have heavy fighting in southern Lebanon. The United States is not retaliating in Syria. The United States is an illegal occupation force in Syria. In the Al-Tanf area where it occupies, in fact, there are tribes that were loyal to ISIS. Those tribes are trained by the Americans right now, and they use that area, Al-Tanf, to attack Syrian government forces. And in the last couple of months, they carried out two major attacks, in each case killing between 15 to 20 conscript soldiers on buses, and I think on both occasions. So the United States, its presence in Syria is illegal. It is stealing Syrian oil in the east of the country and exporting it. In Iraq, the United States has bombed Iraqi military positions. It has destroyed Iraqi facilities that were constructed and paid for by the Iraqi government. This is the reality on the ground.
اس طرح دیکھا جائے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ امریکہ دراصل زائنی شاسن کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان تتوؤں کی مدد کر رہا ہے جو پشمی ایشیا کے دیشوں کی جنتا اور سرکاروں کے لیے سمسیائیں پیدا کرتے ہیں. دراصل اسی طرح کی پرستھتیوں میں امریکہ کو اپنے ہت نظر آتے ہیں, مگر یہ بھی سچائی ہے کہ زمینی حالات امریکی اچھاؤں اور کامناؤں کے وپریت دشا میں آگے جا رہے ہیں. تو شروع کارکرم وش درپن یہیں پر سماپت ہوتا ہے.